एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो शायद सबसे बड़ा है, हमारा ब्रह्मांड। इसकी कहानी, इसकी शुरुआत, ये किससे बना है और इसका भविष्य क्या है, मतलब कॉस्मोलॉजी। ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि अब ये सिर्फ क्या कहते हैं कवियों या दार्शनिकों के सोचने की बात नहीं रही है, ये एक प्रॉपर साइंस बन चुका है। आज हम पीटर कोल्स की किताब कॉस्मोलॉजी के जरिए समझेंगे कि कैसे कैसे इंसान ने अटकलों से आगे बढ़कर सबूतों के आधार पर ब्रह्मांड को समझना शुरू किया।
हाँ, और ये सफर ही अपने आप में एक कहानी है, कैसे हम इस छोटे से ग्रह से अरबों प्रकाशवर्ष दूर की चीजों को जान पाए। लेकिन जैसा कोल्स बताते हैं, इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शायद ये है कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ही हमें ये बताती है कि हम कितना कम जानते हैं। सोचिए, हमारा बेस्ट मॉडल कहता है कि हम ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही समझते हैं, बस 5%।
सही कहा, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वो अभी भी एक पहेली है।
तो आज की चर्चा इसी रोमांचक सफर पर होगी। क्या क्या जान लिया है, कैसे जाना है और कितना कुछ जानना अभी बाकी है। ये विज्ञान की एक तरह से जासूसी कहानी जैसा है।
बिल्कुल।
और इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे गाइड हैं पीटर कोल्स। ये एस्ट्रोफिजिक्स के जाने माने प्रोफेसर हैं
जी,
जिन्होंने कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में काम किया है, ससेक्स, कार्डिफ, मिनूथ।
हाँ, और उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं बनाते बल्कि असल डेटा उन आंकड़ों से भी जूझते हैं जो स्पेस टेलीस्कोप और सर्वे से आते हैं। उनका काम ब्रह्मांड की बड़ी संरचनाओं और बिग बैंग की गूंज यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB उस पर रहा है। वो इस फील्ड को बदलते हुए देख चुके हैं, मतलब करीब से।
और सबसे अच्छी बात, वो मुश्किल चीजों को आसान बनाकर समझा सकते हैं, जैसे स्पेस का फैलना या टाइम का मोड़ना। ऐसी बातों को वो बिना वैज्ञानिक गहराई कम किए सरल भाषा और अच्छी मिसालों से समझाते हैं। ये उन्हें इस विषय पर बात करने के लिए बेहतरीन बनाता है मेरे ख्याल से।
हाँ, उनका नजरिया सिर्फ ये नहीं बताता कि हम क्या जानते हैं बल्कि ये भी कि हम उसे कैसे जानते हैं। वो वैज्ञानिक तरीके पर जोर देती हैं, कैसे आइडिया आते हैं, उन्हें परखा जाता है, टेस्ट किया जाता है और कैसे सबूतों के आधार पर वो बदलते या मजबूत होते हैं।
अच्छा, तो पीटर कोल्स की किताब क्या करती है, मतलब उसका सार क्या है?
देखिए, ये किताब हमें कॉस्मोलॉजी के पूरे सफर पर ले जाती है, इतिहास से लेकर आज के बड़े सवालों तक। ये उन लोगों के लिए है जो उत्सुक हैं, जिन्हें जानना है कि भाई ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, पर उन्हें बहुत ज्यादा फिजिक्स या गणित में नहीं डूबना है।
एक तरह से आम पाठक के लिए।
हाँ, ये हमें सोलर सिस्टम से शुरू करके अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक ले जाती है, फिर टाइम में पीछे 20वीं सदी की शुरुआत में जब एडविन हबल ने वो क्रांतिकारी खोज की थी कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि फैल रहा है, उसने सब कुछ बदल दिया था।
हाँ, वो तो गेम चेंजर था।
बिल्कुल। किताब फिर समझाती है हॉट बिग बैंग मॉडल को। ये बताती है कि ये मॉडल सिर्फ हवावाई बात नहीं, इसके पीछे 3 ठोस सबूत हैं।
अच्छा, कौन कौन से?
पहला, वही हबल का बताया ब्रह्मांड का फैलाव। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, वो शुरुआती गर्मी की गूंज जो आज भी मौजूद है, जिसे पेंजियास और विल्सन ने खोजा था।
हाँ हाँ, सुना है।
और तीसरा, बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस यानी ब्रह्मांड के पहले कुछ मिनटों में बने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों की एकदम सही मात्रा मिलना, जैसी भविष्यवाणी की गई थी। इन तीनों का मिलना इस मॉडल को बहुत मजबूत बनाता है।
ओके, 3 पक्के सबूत, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब हमें ब्रह्मांड के रहस्यमयी हिस्सों से मिलवाती है डार्क मैटर।
हाँ, वो जो दिखता नहीं पर है।
हाँ, जो गैलेक्सीज को थामे हुए पर दिखता नहीं, और डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड के फैलाव को और तेज कर रही है, और यही वो 95% वाला विरोधाभास आता है। और आखिर में किताब शुरुआती पलों के एक और सिद्धांत कॉस्मिक इन्फ्लेशन पर बात करती है, जो बिग बैंग मॉडल की कुछ गुत्थियां सुलझाता है और भविष्य के सवालों पर भी नजर डालती है। क्या होगा ब्रह्मांड का अंत, आगे क्या खोजना है, वगैरह वगैरह।
चलिए, कुछ हिस्सों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत होती है स्केल से, है ना? मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये समझना ही मुश्किल है।
हाँ, ये समझना जरूरी है। किलोमीटर तो भूल ही जाइए, यहाँ यहाँ बात होती है प्रकाश वर्ष में। यानी एक साल में रोशनी जितनी दूरी तय करती है, सोचिए।
और हमारा पता वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है।
हाँ, पृथ्वी, सौरमंडल, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें अरबों तारे हैं, फिर लोकल ग्रुप गैलेक्सी का एक झुंड, फिर वर्गो सुपर क्लस्टर, और ये सब एक विशाल कॉस्मिक वेब का हिस्सा है। मतलब दिमाग घूम जाता है सोचकर।
सही में, और इतने बड़े पैमाने पर चीजों को समझने के लिए एक बुनियादी आइडिया जरूरी है, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि अगर आप बहुत बड़े स्केल पर देखें तो ब्रह्मांड हर जगह और हर दिशा में लगभग एक जैसा ही है। मतलब कहीं कोई खास कोना या सेंटर नहीं है, ऐसा माना जाता है।
अच्छा,
इसी भरोसे पर हम पूरे ब्रह्मांड का एक मॉडल बना पाते हैं।
ठीक है, फिर आता है वो मोड़ जिसने सब बदल दिया, एडमिन हबल की खोजें। 1920 के दशक में वो ग्रेट डिबेट चल रही थी, है ना, कि वो धुंधली स्पाइरल चीजें क्या हैं।
हाँ बिल्कुल, क्या वो हमारी गैलेक्सी के अंदर गैस के बादल हैं या बहुत दूर की अलग गैलेक्सीज?
और हबल ने इसका जवाब दिया।
हाँ, हबल ने 1923 में एंड्रोमेडा नेबुला में एक खास किस्म का तारा देखा, सीफेड वेरिएबल।
और उससे उसकी दूरी नापी।
पता चला ये हमारी मिल्की वे से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, ये एक अलग गैलेक्सी है।
बाप रे, मतलब रातों रात ब्रह्मांड अरबों गुना बड़ा हो गया।
एकदम। लेकिन हबल यही नहीं रुके, उन्होंने देखा कि ज्यादातर गैलेक्सीज की रोशनी रेड शिफ्टेड है।
रेड शिफ्टेड मतलब?
मतलब उनकी वेवलेंथ खिंच गई है, लंबी हो गई है, डॉपलर इफेक्ट की तरह समझ लीजिए। इसका मतलब था कि वो हमसे दूर जा रही हैं।
अच्छा,
और 1929 में आया हबल का नियम, गैलेक्सी जितनी दूर उतनी तेजी से दूर जा रही है, वी इज इक्वल टू एच नॉट डी।
यहाँ कोल्स की वो किशमिश वाली ब्रेड की मिसाल बहुत अच्छी है ना?
हाँ बहुत अच्छी, जैसे फूलती ब्रेड में किशमिश एक दूसरे से दूर जाती हैं, वैसे ही गैलेक्सीज स्पेस के फैलने की वजह से दूर जा रही हैं। स्पेस खुद फैल रहा है।
इसने ब्रह्मांड को एक स्थिर जगह से एक बदलती हुई डायनामिक कहानी बना दिया।
बिल्कुल। अच्छा, तो अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो लॉजिकली अतीत में ये जरूर छोटा, घना और गर्म रहा होगा।
एकदम, यही है हॉट बिग बैंग का मूल आइडिया। और जैसा हमने कहा, इसके तीन मजबूत सबूत हैं। पहला तो हबल का फैलाव, दूसरा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड।
हाँ, वो गूंज।
हाँ, 1964 में पेंजियास और विल्सन को सहयोग से मिल गया शुरुआती आग के गोले की बची हुई धीमी गूंज, पूरे आसमान में फैली हुई, तापमान करीब 2.7 केल्विन, बिल्कुल वैसा जैसा थ्योरी ने कहा था। ये ब्रह्मांड की तब की तस्वीर है जब वो सिर्फ 3,80,000 साल का था, बेबी पिक्चर यूनिवर्स की।
कमाल है। और तीसरा सबूत, बिग बैंग न्यूक्लियो, क्या था वो?
बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस।
बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस,
थोड़ा मुश्किल नाम है पर आइडिया सिंपल है। बिग बैंग के पहले कुछ मिनटों में बने हल्के तत्व, थ्योरी कहती है करीब 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और जरा सा लिथियम ड्यूटेरियम बनना चाहिए।
और क्या ऐसा ही मिला?
और कमाल ये है कि जब हम पुरानी चीजों को देखते हैं तो हमें ठीक यही अनुपात मिलता है।
हाँ,
इन तीन अलग अलग चीजों का एक ही कहानी बताना, ये विज्ञान में बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता।
सही है।
तो इन सबको मिलाकर बनता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल, लैम्डा सीडीएम मॉडल कहते हैं शायद इसे।
हाँ, लैम्डा सीडीएम मॉडल, इसकी नींव आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी है, जो बताती है कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम का मुड़ना है।
हाँ,
उसी के समीकरणों से फ्रीडमैन और लेमेत्रे जैसे लोगों ने दिखाया कि ब्रह्मांड फैल सकता है या सिकुड़ सकता है, स्थिर रहना मुश्किल है।
अच्छा,
और फिर सवाल उठा कि ब्रह्मांड बना किससे है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है।
हाँ, और जब हिसाब लगाया गया तो मतलब होश उड़ गए, पता चला हम, तुम, तारे, ग्रह, यानी सारा नॉर्मल मैटर,
जिसे बैरियोनिक मैटर कहते हैं।
हाँ, बैरियोनिक मैटर, ये तो कुल मिलाकर सिर्फ 5% है। सोचिए, सिर्फ 5%।
सिर्फ 5%? तो बाकी का 95% क्या है फिर? ये तो
यही रहस्य शुरू होता है। करीब 27% है डार्क मैटर।
डार्क मैटर? हाँ सुने, ये दिखता नहीं है ना?
नहीं, ये लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता, पर इसका गुरुत्वाकर्षण असर करता है। गैलेक्सीज जितनी तेजी से घूमती हैं, वो बिना इसके समझ नहीं आता। ये वेरा रूबिन का काम था।
अच्छा,
और ये लाइट को मोड़ता भी है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ये वो अनदेखा ढांचा है जिस पर गैलेक्सीज टिकी हैं एक तरह से।
ओके, तो 5% नॉर्मल मैटर, 27% डार्क मैटर, ये हुआ 32%, बाकी का क्या? वो तो और भी ज्यादा है।
हाँ, सबसे ज्यादा करीब 68% है डार्क एनर्जी। ये और भी अजीब चीज है।
डार्क एनर्जी, ये क्या बला है?
1990 के दशक में वैज्ञानिक दूर के सुपरनोवा देखकर ब्रह्मांड के फैलाव की दर नाप रहे थे। उन्हें लगा था कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से फैलाव धीमा हो रहा होगा।
हाँ, लॉजिकल लगता है।
पर नतीजा उल्टा आया। पता चला कि फैलाव धीमा नहीं बल्कि तेज हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है।
क्या?
तेज हो रहा है।
क्यों?
इसका कारण माना गया डार्क एनर्जी। ये स्पेस की अपनी कोई अजीब सी रहस्यमय ताकत लगती है जो चीजों को दूर धकेल रही है, एंटी ग्रेविटी जैसी।
बाप रे, तो ये है आज की स्थिति। हमारा मॉडल लैम्डा सीडीएम बहुत सारे डेटा से मैच करता है, पर वो खुद ही कहता है कि 95% चीजें, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, हमें पता ही नहीं।
ये थोड़ा डरावना भी है और रोमांचक भी कि इतना कुछ जानना बाकी है।
हाँ, एक और सवाल मन में आता है। अगर सीएमबी दिखाता है कि शुरुआती ब्रह्मांड इतना स्मूथ, इतना एक जैसा था, तो आज इतनी सारी गैलेक्सीज और क्लस्टर्स की गांठें कैसे बन गई? ये स्ट्रक्चर कैसे बना?
अच्छा सवाल है। जवाब है गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण? पर वो तो चीजों को खींचता है।
हाँ देखिए, सीएमबी एकदम परफेक्टली स्मूथ नहीं था। उसमें तापमान के बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे, लाख में एक हिस्से जितने, बहुत ही मामूली। ये असल में घनत्व के हल्के फर्क थे, कहीं थोड़ा ज्यादा मैटर, कहीं थोड़ा कम।
अच्छा, छोटे छोटे बीज जैसे। बिल्कुल, बीज। अरबों सालों में जहां थोड़ा ज्यादा घनत्व था, वहां गुरुत्वाकर्षण ने आसपास के मैटर को और खींचा और खींचता गया, और ये बीज धीरे धीरे बड़े होकर आज की गैलेक्सी और क्लस्टर बन गए। गुरुत्वाकर्षण ने छोटी चीजों को बड़ी चीजों में बदला।
और इसमें डार्क मैटर का क्या रोल था? आपने कहा था वो जरूरी है।
हाँ, डार्क मैटर का रोल बहुत बहुत अहम था, क्योंकि वो लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता, वो नॉर्मल मैटर के दबाव और गर्मी से बेअसर था। इसलिए वो नॉर्मल मैटर से पहले ही इकट्ठा होना शुरू हो गया। उसने वो अदृश्य ग्रेविटी वेल्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण के गड्ढे बनाए।
अच्छा,
बाद में नॉर्मल गैस इन गड्ढों में खिंचकर आई और ठंडी होकर तारे और फिर गैलेक्सीज बनी। कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाते हैं कि इसी तरह वो कॉस्मिक वेब जैसा ढांचा बना जो हम बड़े स्केल पर देखते हैं। डार्क मैटर ने ढांचा तैयार किया।
समझ गया। तो डार्क मैटर के बिना शायद गैलेक्सीज बनी नहीं पाती।
हाँ, या इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा नहीं बन पाती, वो जरूरी था।
ये हार्ड बिग बैंग मॉडल या लैम्डा सीडीएम मॉडल काफी सफल रहा है जैसा आप कह रही हैं, लेकिन इसमें भी कुछ पहेलियां थीं शुरू में, है ना? कॉल्स बताते हैं इसके बारे में।
हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल बहुत कुछ समझाता था, पर तीन बड़ी पहेलियां थीं जिन्हें वो समझा नहीं पा रहा था।
कौन सी थीं?
पहली थी फ्लैटनेस प्रॉब्लम। हमारा ब्रह्मांड ज्यामितीय रूप से इतना सटीक रूप से फ्लैट क्यों है? आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से जरा सा भी कर्व होता शुरू में, तो आज तक वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता। या तो यूनिवर्स कब का वापस सिकुड़ चुका होता अगर पॉजिटिव कर्व होता, या इतना ज्यादा फैल जाता कि कुछ बन ही ना पाता अगर नेगेटिव कर्व होता। ये इतनी फाइन ट्यूनिंग क्यों?
ये तो अजीब बात है। और दूसरी,
विपरीत हिस्सों में भी एक जैसे तापमान का क्यों है? लगभग 2.7 केल्विन हर जगह। बिग बैंग मॉडल के हिसाब से यूनिवर्स की उम्र इतनी नहीं थी कि लाइट उन दो विपरीत हिस्सों के बीच आ जा सके, तो वो कभी थर्मल कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते थे। फिर उनका तापमान एक जैसा कैसे हुआ? जैसे दो लोग जो कभी मिले ही नहीं, उनकी आदतें एक जैसी कैसे हों?
हाँ, ये भी अजीब है। और तीसरी प्रॉब्लम?
तीसरी थी मोनोपोल प्रॉब्लम। कुछ कण भौतिकी की थ्योरीज, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज, भविष्यवाणी करती थीं कि शुरुआती गर्म ब्रह्मांड में बहुत सारे मैग्नेटिक मोनोपोल्स बनने चाहिए थे, यानी अकेले नॉर्थ या साउथ पोल वाले मैग्नेट।
ओके।
पर हमें आज तक एक भी नहीं मिला है, वो सब कहाँ गए?
तो ये तीन पहेलियां थीं, फ्लैटनेस, होराइजन और मोनोपोल। इन्होंने वैज्ञानिकों को परेशान किया होगा
बहुत। और यहीं पर 1980 के आसपास एक बहुत क्रांतिकारी आइडिया आया, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इसे खासकर एलन गुड से जोड़ा जाता है।
इन्फ्लेशन मतलब महंगाई?
नहीं, यहाँ मतलब है बहुत तेजी से फैलना। आइडिया ये है कि बिग बैंग के एकदम बाद एक सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में, शायद 10^-36 से 10^-32 सेकंड के बीच, ब्रह्मांड अविश्वसनीय तेजी से फैला। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब घातीय रूप से बढ़ा।
बापरे, कितना तेजी से?
इतना तेजी से कि एक परमाणु के नाभिक से भी छोटा क्षेत्र फैलकर हमारे पूरे देखने योग्य ब्रह्मांड से भी बड़ा हो गया, एक पलक झपकने से भी कम समय में।
ये तो अविश्वसनीय लगता है।
इससे वो पहेलियां कैसे हल हुई?
देखिए, इस जबरदस्त फैलाव ने क्या किया, इसने एक छोटे से आपस में जुड़े हुए एक जैसे तापमान वाले हिस्से को खींचकर इतना बड़ा बना दिया कि वो हमारे पूरे आसमान पर छा गया। तो अब विपरीत दिशाओं में एक जैसा तापमान होना लॉजिकल है, क्योंकि वो मूल रूप से एक ही जगह से आए थे। होराइजन प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
अच्छा, वाह। और जैसे आप एक गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसकी सतह सपाट लगने लगती है, वैसे ही इस भारी फैलाव ने स्पेस टाइम के किसी भी शुरुआती कर्वेचर को लगभग पूरी तरह फ्लैट कर दिया। फ्लैटनेस प्रॉब्लम सॉल्व।
कमाल है। और मोनोपोल,
वो भी इसी फैलाव में इतने दूर दूर फैल गए कि हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड में उनकी संख्या लगभग शून्य हो गई। मोनोपोल प्रॉब्लम सॉल्व।
वाह, तो एक आइडिया ने तीन बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
हाँ, और एक बोनस भी मिला।
बोनस वो क्या?
इसी इन्फ्लेशन के दौरान क्वांटम लेवल पर ऊर्जा के छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं।
बिल्कुल।
इन्फ्लेशन ने इन नन्हे उतार चढ़ावों को खींचकर खगोलीय आकार का बना दिया। यही वो छोटे छोटे घनत्व के फर्क बने जो बाद में गुरुत्वाकर्षण के जरिए गैलेक्सी बनने के बीज साबित हुए। इन्फ्लेशन ने संरचना के बीज भी बो दिए।
ये तो कमाल का आइडिया है। तो क्या इसके सबूत हैं?
कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो इन्फ्लेशन की भविष्यवाणियों से मेल खाती हैं। ये अभी भी एक्टिव रिसर्च का एरिया है।
समझ गया। तो इस पूरी चर्चा से पीटर कोल्स की किताब के आधार पर कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं, क्या टेकअवेज हैं?
मेरे ख्याल से पहली बात तो यही कि कॉस्मोलॉजी अब सिर्फ दर्शन या अटकलबाजी नहीं है, बल्कि एक सटीक डेटा पर आधारित विज्ञान है। COB, WMP, प्लैंक जैसे सैटेलाइट्स और बड़े बड़े गैलेक्सी सर्वे हमें कमाल की प्रिसिजन दे रहे हैं।
हाँ, ये बात तो है। दूसरी,
हॉट बिग बैंग मॉडल की जबरदस्त कामयाबी। ये सिर्फ एक सबूत पर नहीं टिकी, बल्कि तीन अलग अलग तरह के अवलोकन, ब्रह्मांड का फैलाव, CMB और हल्के तत्वों की मात्रा एक दूसरे से सटीक तालमेल बिठाते हैं। ये मॉडल वाकई काम करता है।
और तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है।
हाँ, वो 95% वाला रहस्य, हमारा सबसे कामयाब मॉडल लैम्डा CDM ही हमें विनम्रता से बताता है कि हम ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारी सबसे बड़ी सफलता ने ही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता को उजागर किया है। ये विज्ञान की ईमानदारी भी दिखाता है और आगे की चुनौती भी।
बिल्कुल। जैसे हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं, जितना ज्यादा जानते हैं उतना पता चलता है कि कितना कुछ नहीं जानते हैं।
सही कहा। चौथी बात, सिद्धांत और अवलोकन का वो गतिशील खेल, वो तालमेल, कैसे गैमोव जैसे लोगों की भविष्यवाणी ने पेंजियाज और विल्सन को CMB खोजने में मदद की, या कैसे वेरा रुबिन के अवलोकन ने डार्क मैटर की अवधारणा को मजबूत किया। विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, आइडिया और सबूत के लेन देन से।
ये हमारे सीखने के तरीके जैसा ही है, सोचना, आजमाना, सीखना और फिर अपनी समझ को बेहतर बनाना।
इट्स इवॉल्विंग। इसका एक इतिहास है, एक वर्तमान है और एक भविष्य भी होगा जो आज से बहुत अलग हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव ही नियम है और हमारा ज्ञान भी हमेशा विकसित होता रहेगा।
हाँ, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कोल्स की किताब से कुछ विचार वाकई दिमाग में रह जाते हैं ना?
हाँ बिल्कुल। जैसे ये एहसास कि ब्रह्मांड का फैलना जानना शायद इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक क्रांतियों में से एक था। इसने ब्रह्मांड को एक स्थिर मंच से एक गतिशील कहानी में बदल दिया, जिसका एक अतीत, वर्तमान और भविष्य है।
सही। और वो 5% बनाम 95% वाली बात, ये एक साथ हमारी समझ की ताकत कि हम इतना जान पाए और हमारी सीमाओं का प्रतीक है। हम इतने स्मार्ट हैं कि इतना कुछ जान पाए, पर इतने विनम्र भी कि मानते हैं कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये है विज्ञान की खूबसूरती।
हाँ, और CMB को ब्रह्मांड की बचपन की फोटो या सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म कहना भी कितना सटीक है। वो 3,80,000 साल पुराने यूनिवर्स की सीधी झलक जिसमें आज की हर चीज के बीच थे। ये सोचना ही अद्भुत है।
और वो स्टारडस्ट वाली बात, कार्ल सेगन ने कहा था ना?
हाँ, कॉल्स भी इस पर जोर देते हैं। हम सचमुच तारों में बने भारी तत्वों से बने हैं। हमारे शरीर का लोहा, कैल्सियम, कार्बन सब तारों के भट्टियों में बना है। पर विडंबना देखिए, तारे खुद उस डार्क मैटर के ढांचे में बने हैं जिसे हम समझते ही नहीं। हम ज्ञात और अज्ञात दोनों से गहराई से जुड़े हैं।
वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, तो ये सब जानना दिलचस्प तो है, पर क्या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना है? मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
देखिए, सीधे तौर पे शायद नहीं। कॉस्मोलॉजी जानने से सुबह की चाय बेहतर नहीं बनेगी,
नहीं।
लेकिन ये सोचने का नजरिया बदल सकता है। ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल के इतिहास और इसके विशाल पैमाने के सामने हमारी अपनी चिंताएं, हमारी परेशानियां थोड़ी थोड़ी छोटी लग सकती हैं।
सही कहा।
ये एक तरह की विनम्रता सिखाता है, है ना, एक पर्सपेक्टिव देता है।
सही कहा है।
ये थोड़ा सुकून दे सकता है शायद।
और ये वैज्ञानिक तरीका सीखने का मौका देता है, कैसे सबूतों को परखा जाता है, कैसे मॉडल बनते और बदलते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक सोच, और ये तो हर जगह काम आती है, नौकरी में, घर में, समाज को समझने में, फेक न्यूज पहचानने में भी।
बिल्कुल। और ये जिज्ञासा जगाता है, वंडर, डार्क एनर्जी क्या है, बिग बैंग से पहले क्या था, मल्टीवर्स है या नहीं। ऐसे सवाल हमें सीखने और सोचने पर मजबूर करते हैं, दुनिया को सिर्फ सतह पर नहीं गहराई में देखने की प्रेरणा देते हैं।
हाँ, और ये जानना कि हम सब स्टारडस्ट हैं, ये हमें यूनिवर्स से एक जुड़ाव महसूस कराता है। हम अलग थलग नहीं है, हम इसी कहानी का हिस्सा है।
सही बात। और ये मानव सरलता से प्रेरणा भी देता है। सोचिए, हमने इतने बड़े टेलीस्कोप बनाए हैं, इतने संवेदनशील डिटेक्टर, सुपर कंप्यूटर पे सिम्युलेशन। ये दिखाता है कि जब इंसान मिलकर ज्ञान की प्यास बुझाने की कोशिश करता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। ये सहयोग की ताकत दिखाता है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे खास बात, सबसे यादगार टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए शायद वो 95% वाला विरोधाभासी सबसे गहरा सबक है कि हमारी सबसे सफल थ्योरी ही हमें बताती है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमारे लिए एक रहस्य है। ये विनम्रता सिखाता है और आगे खोज करने की जबरदस्त प्रेरणा देता है। कॉस्मोलॉजी एक रोमांचक वैज्ञानिक जासूसी कहानी है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
सही कहा। मेरे लिए शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि कैसे हम इतने विशाल और पुराने ब्रह्मांड को समझने में सक्षम हुए हैं, सिर्फ अवलोकन और तर्क के जरिए। वो हॉट बिग बैंग के 3 स्तंभों का तालमेल, फैलाव, CMB, BBN, ये वाकई प्रभावशाली है। ये वैज्ञानिक पद्धति की ताकत दिखाता है।
और ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि हमेशा बदल रहा है, और हमारा ज्ञान भी। कल कुछ नया पता चल सकता है जो आज की समझ को बदल दे।
बिल्कुल। ये हमें अपनी जगह का एहसास कराता है, हम कितने छोटे हैं, और साथ ही मानव बुद्धि की क्षमता का भी, कि हम इतने बड़े सवालों से जूझ सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।